Ladies and gentlemen, good day and welcome to Shree Pushkar Chemicals and Fertilizers Q2 and H1 FY25 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then zero on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to the Company Secretary, Mr. Pankaj Manjani. Thank you, and over to you, sir.
Good evening, everyone, and we welcome all the participants to Shree Pushkar Chemicals and Fertilizers Limited Q2 FY 2025 earnings call. Joining us today from the management side, we have Mr. Puneet Makharia, Chairman and Managing Director, Mr. Deepak Beriwala, Chief Financial Officer. Now, I will hand over the call to Mr. Puneet Makharia for his opening remarks. Over to you.
Thank you, Pankaj. Very good evening to everyone, and welcome to Q2 and H1 FY25 earnings call for Shree Pushkar Chemicals and Fertilizers Limited. I hope you have a great opportunity to review our financial results and investor presentation, which are available on both the stock exchanges and our company website. As we close the second quarter of FY25, the quarter results have showcased our steady execution and focus on operational efficiencies, positioning us well to navigate both opportunities and challenges in the industry. Friends, starting with our chemical division, our volume reached at 15,510 metric tons in Q2 FY25 compared to 16,475 metric tons in Q2 FY24. This represents a 5.9% decrease from the same quarter last year. Our fertilizer division has shown a constant demand, with sales volume increasing to 60,896 metric tons in Q2 FY25, a 23.6% growth year-on-year. Combined, these performances have driven our total sales amount to 76,406 metric tons, making us a rise of 16.2% rise on a year-on-year basis. Our focus on sustainable growth is demonstrated by strategic investments made in this quarter, including a CapEx of 11 crores that brings our total CapEx as of 30th of September 2024 to 68.48 crores, which has been funded totally through internal accruals, supporting our aim to expand opportunities, diversify our product offerings, and enhance both forward and backward integration. These investments align with our vision for a more sustainable energy mix for our operations. Friends, our ongoing capital expenditure projects are designated to support our growth path by expanding our production capacity in both the chemicals and fertilizers divisions. These upgrades will allow us to meet increasing market demands more efficiently once fully operational. These investments are expected not to increase our output but also enhance profitability through improved cost efficiencies and economies of scale. Government measures aiming at strengthening industrial production, advanced infrastructure, and promoting manufacturing are creating a positive business climate, which reinforces our confidence in our strategic direction. A key highlight to our financial strategy remains our Nolian Deposits facility, which now stands at 141.10 crores. This facility provides us the additional liquidity and flexibility as we are continuing to invest in both current and future projections. Looking forward, our focus remains on enhancing operational efficiencies, expanding our capacities, and exploring new growth avenues within both chemical and fertilizer sector. We are optimistic about the future, which we expect will drive our sustained demand for our products in coming months. With this, now I would like to hand over the call to Mr. Deepak, our CFO, who will delve deeper into the operational and financial specifics of Q2 and H1 FY25. Thank you, Deepak.
Thank you, sir. Good evening, everyone, and thank you for joining us today. I will take you through our operational and financial performance for the second quarter and first half of FY25. In Q2 FY25, our chemical division achieved a sales volume of 15,510 metric tons, marking a 2.7% decrease from the previous quarter and 5.9% decline compared to Q2 FY24. In the fertilizer division, volume reached 60,896 metric tons in Q2 FY25, down 12.7% quarter-on-quarter, but reflecting a 23.6% increase year-on-year basis. Together, these results brought our total Q2 sales volume to 76,406 metric tons, representing a 10.8% sequential decline, but a 16.2% increase over Q2 of the previous year. For the first half of FY 2025, our consolidated volume in chemical division reached 31,453 metric tons, representing a year-on-year growth of 4.8%. The fertilizer division recorded 1,30,618 metric tons in H1 FY25, a 23.6% increase compared to the first half of the previous financial year. This overall growth led to the total volume of 1,62,071 metric tons for H1 FY25, marking a 19.4% increase over H1 FY24. Turning to our financial, we reported a consolidated revenue of 175.6 crore in Q2 FY25, reflecting a 9.6% decrease from the previous quarter and a 5.2% reduction from Q2 FY24. EBITDA for Q2 FY25 was Rs 19.10 crore, a year-on-year improvement of 36.7%, leading on EBITDA margin of 10.9%. Net profit for the Q2 FY reached 13.3 crore and increased 57.5% increase year-on-year, resulting in net profit margin of 7.6%. For the first half of FY 2025, our revenue amounted to 369.8 crore, at a 2.5% increase year-on-year. EBITDA for H1 FY25 was 36.7 crore, delivering an EBITDA margin of 9.9%, a 31.3% year-on-year improvement. Net profit for H1 FY was 26.2 crore, a 60% increase on year-on basis with the net profit margin of 7.1%. With that, I open the floor for questions. Thank you so much.
Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Preet from Wealth Finser. Please go ahead.
Yes, hi. Good numbers, Shri Pushkar and team. Suresh ji, aapse ek sawal tha. We were looking at a overall guidance of 15% for the full financial year, which would have taken, say, our turnover to somewhere between 825 to 840 crores. Now, given the run rate that we have achieved, that looks very difficult. So, can you share what your revised numbers could look like for the full year?
Preetji, honestly speaking, I don't see it more difficult, you know. And as you see that we have already done close to 370 crores of revenue on a total consolidated basis and around, I think, profit margin of 26 crores on consolidated basis on H1. If you see our earlier past performance, generally it has been seen that the Q4 is always better than the, you know, previous three quarters. So, ab agar aap dekho ki 800 crore ke andar, हम hardly, you know, 400 crore रुपए से दूर हैं, जो कि कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है प्रीत जी. और जहां तक profitability की बात कर रहे हैं, I have always said my idea and my projection is that हम 800 crore रुपए का revenue इस साल में achieve करेंगे और तकरीबन 60 करोड़ के आसपास का कहीं ना कहीं PAT achieve करेंगे. तो ये नंबर्स में मुझे कोई बड़ी चैलेंज या बड़ा फाइट नजर नहीं आता सर. और सेकंडली एक बात मैं इसमें आपको और भी ऐड करना चाहूंगा कि आप देखो ये जो रबी का सीजन जो चल रहा है, जो अभी अक्टूबर से चालू हुआ, बराबर है, इस रबी के सीजन में अगर आप देखोगे ये जो अक्टूबर से चालू हुआ है, ये साल मतलब जो थर्ड क्वार्टर का नंबर आएगा, वो नंबर जब हम लोग जनवरी में जब अपना कॉन कॉल करेंगे आपको दिखाई देगा. आई थिंक आप अगले कॉन कॉल में भी रहोगे तो आप खुद बोलोगे कि नहीं भैया ये नंबर अब क्वाइट अचीवेबल हमको दिखाई दे रहा है.
राइट सर. रबी क्रॉप अच्छा लग रहा है ना सर, क्योंकि हर कंपनी बोल रही है
ऐसा है कि ओवरऑल डीएपी की भारी शॉर्टेज है। फर्टिलाइजर सेक्टर की मैं अगर आपसे बात करूं तो डीएपी की भारी शॉर्टेज है और डीएपी इस वक्त आना भी नहीं है। उसका बेनिफिट, उसका सब्स्टिट्यूट आज की तारीख में खाली एसएसपी है। एक तो वहां अपने को काफी अच्छी पुल मिलेगी। दूसरी चीज, मैं सर अभी जैसे खुद चार दिन बांग्लादेश था, आई रिटर्न ऑन 9th of this month ओनली। बांग्लादेश जाने के बाद में मेरा व्यू काफी बदला है और व्यू बदलने के जो मुख्य कारण है, अगर अपन उसमें देखेंगे कि वहां पे लोगों के पास में काम भयंकर है। इन स्पाइट ऑफ देयर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ऑल्सो, जो कि आज हम लोग यहाँ मीडिया में देखते हैं, अरे भैया ढाका में ऐसा हो गया, बांग्लादेश में ये हो गया, वो हो गया, ये सब चीजें मीडिया दिखा रही है, बट अगर आप ग्राउंड लेवल रियलिटी के ऊपर जाके देखोगे तो ऐसी कोई चीज वहां पे नहीं है सर। रादर आई एम एक्सपेक्टिंग ए ग्रेट बिजनेस इवन फ्रॉम ढाका ऑल्सो एज वेल एज इन डाइस सेक्टर ऑल्सो। और अगर आज इंटरमीडिएट्स की मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये पहले से थर्ड क्वार्टर में काफी इम्प्रूवमेंट आ गया है। जस्ट एक आपको थोड़ा सा एक फील फैक्टर अगर मैं देने की कोशिश करूं तो आप ये समझ लो सर कि इंटरमीडिएट्स ले लो और इंटरमीडिएट्स के अंदर कहीं ना कहीं सर 10% के आसपास का इम्प्रूवमेंट 100% दिखाई दे रहा है और वो आज हम अचीव भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो एक प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं विनाइल सल्फोन, वो 230-232 रुपए में वी आर सेलिंग टिल द सेकंड क्वार्टर, और ये थर्ड क्वार्टर के अंदर वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं सर 265-260 रुपए तक की लेवल के ऊपर है आज की तारीख में। ये लेवल के ऊपर भी काम है, ऑर्डर्स है, मतलब टिल जनवरी ऑलमोस्ट वी आर पैक्ड अप।
तो सर क्या कैपेसिटी में चल रहे होंगे अभी केमिकल्स और फर्टिलाइजर?
अंदाजे से आप ये समझ लो कि कहीं ना कहीं, मैंने कैपेसिटी का आंकड़ा तो नहीं देखा है, बट मेरा अप्रोक्सीमेटली सोचना है कि 65% के आसपास हम लोग चल रहे हैं
केमिकल्स में।
ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैं सर इसके अंदर।
अच्छा, और
मैंने एग्जैक्टली वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन स्लाइड गो थ्रू नहीं करी है, बट मैं जो डे टू डे बेसिस पे हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं या जो देखते हैं उस हिसाब से मैं बोलूँ, कहीं ना कहीं 65% के ऊपर चल रहे होंगे।
और ये सर जो आप डिमांड देख रहे हो, फोर्सी कर रहे हो Q3 या Q4 के लिए, तो कहाँ तक जा सकता है?
मतलब मैं समझा नहीं, कहाँ तक जा सकता है मतलब?
मतलब कितना और इम्प्रूव हो सकता है यहाँ से?
प्राइसिंग की बात कर रहे हैं?
कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात कर रहा हूँ सर।
कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में सर इसके अंदर अभी भी 5-10% का रूम अभी भी है,
अभी भी।
बट होता क्या है सर, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। मतलब आज जैसे कि जो सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस है, चल रहा है, फ्रेट चार्जेस बढ़े हुए हैं काफी, अवेलेबिलिटी ऑफ थोड़ा सा रॉ मटेरियल का भी एक हिकअप चलता है, थोड़ा सा एक इशू चलता है, बट हाँ 5-10% का इंप्रूवमेंट स्कोप इजीली है उसके
अंदर। सर हमारा एक सोलर इनेबल होने वाला था, वो चालू हो गया?
3.8 का जो हमारा SP3 का जो सोलर है, वो आप समझ लो कि 16 तारीख का शटडाउन है हमारे प्लांट पे। तो ये 16 आने वाला 16 नवंबर की बात कर रहा हूँ, तो 16, 17, 18 ये 3 दिन का शटडाउन है, उन 3 दिन के अंदर ये चीज एनेबल हो जाएगी, जो कि अगले महीने के बिजली के बिल में हमको इसका इफेक्ट दिखाई देगा। प्लांट कंप्लीट हो गया है, एक रनिंग कंडीशन में है, खाली कुछ एक टेक्निकलिटीज है साइट के ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, उसके लिए शटडाउन लेना पड़ता है, वो शटडाउन 16, 17, 18 का प्लान किया हुआ है।
अच्छा, और परमिशन सब मिल गए हैं तो ये फाइनल है?
सर एवरीथिंग इज डन, कंप्लीट।
अच्छा, वेरी गुड। सर ये मार्जिन में हेल्प करेगा ना?
डेफिनेटली सर। सर सिंपल चीज है, आज की तारीख में बिजली अगर आप बिजली बोर्ड से लेते हो तो 10-10.25 रुपए की यूनिट पड़ती है।
राइट सर,
अगर आप बिजली का बिल डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट को डिवाइड करोगे तो 10-10.25 रुपए के आसपास बिजली का बिल आता है सर।
राइट सर,
यहाँ पे आपको 50% का, 50-60% का बेनिफिट है कम से कम।
अच्छा, सो ओवरऑल मार्जिन में शायद सर दिस विल ऐड व्हाट 1% और मोर टू EBITDA, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
ना सर, इससे कोई 1% EBITDA सुधरने वाला नहीं है सर। सर आज 1% EBITDA की आप बात करो तो कहीं ना कहीं 8 करोड़ रुपया हो गया सालाना।
करेक्ट,
1% तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ 0.25% का फर्क पड़ेगा।
राइट, ठीक है सर। सर ऐसे ही और व्यू जानना था कि आपका जो केपेक्स चल रहा है, जो 225 करोड़ का प्लान था, वो सपोज टू बी कंप्लीटेड बाय से Q1 और Q2 ऑफ FY26, तो वो सर आपको अभी ट्रैक पे लग रहा है या कोई?
सर देखो ऐसा है, वो तीन चार जगहों में अलग अलग डिफरेंट फेज वाइज है, ठीक है सर। उसमें कुछ हमने छोटा सा एक ट्रायल चालू कर दिया और एक यूनिट 5 का जो कैपेक्स है वो कहीं ना कहीं दिसंबर या जनवरी में हम चालू करेंगे, पर थोड़ा उसमें ट्रायल वगैरह करेंगे और यू नो एक कमर्शियल प्रोडक्शन में आते आते मार्च हो जाएगी सर, बराबर है। तो उसका जो रिजल्ट है, उसकी जो आउटकम्स है, वो अपने को 25-26 में एक पूरी तरह से विजिबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद में सर जो हमने यूनिट 6 जो हम लोग चालू कर रहे हैं, वो हमारी टीम बोलती है कि साहब बारिश के पहले, बोले तो जून 2025 के पहले अपन चालू कर देंगे। मैं थोड़ा सा उसमें कंजर्वेटिवली बिहेव कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि भाई वो लोग जून 25 बोलते हैं तो कहीं ना कहीं जुलाई अगस्त सितंबर तक तो, मतलब Q2 एंड तक तो हम उसको ट्रायल चालू कर लेंगे। मोटा मोटी हम कोई बहुत ज्यादा डिलेड नहीं है,
ठीक है सर, ऑन ट्रैक है। तो सर
महीना दो महीना आगे पीछे समझ लो सर, इतने लंबे काम के अंदर है, महीना दो महीना कोई बड़ी बात नहीं होती
है। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली सर, वो तो जायज भी है।
तो सर दूसरी चीज की कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, 140 करोड़ रुपए आपके पास में आज भी नोलिन इन्वेस्टमेंट्स पड़े हुए हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे, 70 करोड़ रुपए आप लगा चुके हो, तो भाई साहब 70 और 140 210 का आंकड़ा तो इधर ही आ जाता है और पूरा साल बचा हुआ है आपके पास,
राइट सर। तो डेट भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी
सर, हम तो हमारी तो कोशिश है ना जरूरत पड़े, बाकी आगे तो समय बताएगा सर, शायद 99.9999% डेट की जरूरत नहीं पड़ेगी सर इस कैपेक्स के लिए।
सर तो अगर आगे थोड़ा देखा जाए FY25 के आगे, अगर 26 का थोड़ा सोचते हैं, तो कैन वी टारगेट 1000 करोड़ टर्नओवर फॉर 26 बेस्ड ऑन हाउ यू सी द एनवायरमेंट एंड द कैपेसिटी?
25-26?
हाँ जी सर।
सर 25-26 कहीं ना कहीं मेरे ध्यान में 1000 ± 5% आना चाहिए, और यही अगर मैं 26-27 की बात करूं तो कहीं ना कहीं 1400 ± 5% होना चाहिए सर,
ठीक है सर। और अपना जो EBITDA मार्जिन था पुराना 14-15%, वो पॉसिबल है वहां पे आने का?
बस वो कहीं नहीं गया 14-15%, वो अपने वो थोड़ा आराम कर रहा है और वो मुझे लगता है कि आने वाले एक दो क्वार्टर में वो आ जाएगा सर, कहीं नहीं गया वो। आप देखो वो पहले से थोड़ी परिस्थिति सुधर रही है, वो स्टेज बाई स्टेज सुधरेगी, लेट अस नॉट एक्सपेक्ट समथिंग मिरेकल टू दिस, एंड यू विल ऑल्सो सी कि भाई धीरे 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 यू नो सिचुएशन सुधरती जा रही है, Q1 से Q2 बेटर है, Q2 से Q3 भगवान ने चाहा तो और भी अच्छा आएगा, तो यू नो धीरे धीरे सर परिस्थिति सुधरेगी। आई थिंक अगर मैं ये साल की बात करूं तो हम कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली 8% के लेवल पे हम माने चाहिए सर, मेरी उम्मीद है।
8% ऑफ
एट लेवल,
अच्छा फुल ईयर की बात कर रहे हैं?
हाँ जी,
हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। सर सर एक ही क्वेश्चन था कि ये क्वार्टर का टर्नओवर थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम था, तो
सर वो ऐसा है, आप ये Q2 मत देखो, उसको साल में देखो सर, बहुत सी चीजें होती है, कंपनी 5-6 अलग अलग वर्टिकल्स के अंदर चलती है सर, बहुत सी चीजें इसको इम्पैक्ट करती है। अब मैं इतना तो डिटेल में आपको कहां समझाने बैठूं, लेकिन जो पोजीशन है वो हमने आपके सामने रखी है, और ऐसा है सर कि जहां मौका था वहां पे हमने यू नो पैट के ऊपर हिट लेके पैसा बटोरा, अब जब मेरे को आने वाले टाइम में परिस्थिति सुधार दिखाई दे रही है, मैं ये बोलता हूँ कि भैया मैं आज माल नहीं बेचूंगा, एक महीने बाद माल बेचूंगा और मेरे को दो पैसे ज्यादा मिलेंगे। आई वुड लाइक टू कॉम्प्रोमाइज ऑन माय रेवेन्यू सर, मैं अच्छा ऐसा है, लेट अस बिहेव यू नो एज पर द सिचुएशन। जब अपने को ये लगता था कि भैया बाजार में मंदी है तो माल सेलता हो, दो पैसा कम में माल बेच लो, रुपया घर में कर लो,
राइट सर,
लेट अस मेंटेन द कैश फ्लोस,
बराबर।
तो उस टाइम थोड़ा मंदी का टाइम था तो वी बिहेव कंजर्वेटिवली, अब थोड़ा सा सुधार का टाइम है तो आज माल थोड़ा रोक के बेचेंगे तो बेटर है, दो पैसे ज्यादा मिलेंगे,
राइट सर। वही मैं सोच रहा था कि आपका इन्वेंटरी का वो चेंजेस
यार, वो सब छोटी मोटी चीजों का आप उतना ध्यान मत दो सर, ये सब चीजें हमारे पे छोड़ दो, हमको काम करने दो सर, आप उसकी चिंता ना करो,
ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया
सर। सिंपल चीज है, आज माल नहीं बेच के मैं अगर कल माल बेचूंगा दो पैसे ज्यादा मिलेंगे तो आप क्या करोगे, आप माल आज बेचोगे कि कल बेचोगे?
नहीं नहीं सही है सर, लॉजिक सही है
सर, उसके अंदर उसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज ही नहीं है सर। आप इसको Q2 मत देखो, आप इसको पूरा सालाना देखोगे तो परिस्थितियों में काफी बेटरमेंट आपको दिखाई देगा, भगवान ने चाहे।
एब्सोल्युटली सर, और वी आर वेरी हैप्पी विद योर मैनेजमेंट ऑल्सो, एंड वी विश द एंटायर टीम द वेरी बेस्ट, आगे के क्वार्टर बहुत बढ़िया होने वाले दिख रहे हैं सर. थैंक यू सर.
थैंक यू. बिफोर वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिमाइंडर टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, यू मे प्रेस स्टार एंड वन टू आस्क अ क्वेश्चन. The next question is from the line of Harshal Solanki from Equitree Capital. Please go ahead.
Hi team, good afternoon.
Sir, good afternoon, sir. सवाल
पे सर, last participant को आपने जो कहा उससे ही continue करते हैं. अपने volumes degrow हुए हैं.
थोड़ा सा जोर से बोलने में सोलंकी, बहुत कम आवाज आ रही है.
हाँ, मैं बोल रहा हूँ अपना वॉल्यूम डीग्रो हुआ है और इन्वेंट्री बढ़ा है, तो ये आपके जो स्ट्रेटेजी है वो उसके लाइंस में ही है कि अभी आप माल रोक के बेचने का ट्राई कर लो और आगे आपको डिमांड अच्छी दिख रही है इसलिए इन्वेंट्री भी बिल्डअप है. तो आपने जो एक्सप्लेन किया वो वॉल्यूम डीग्रोथ के लिए भी यही आंसर वैलिड रहेगा वो पूछना.
सर जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ये भी कहा कि क्वार्टर थ्री में मैंने एक एग्जांपल दिया कि भैया एक प्रोडक्ट हम बेचते थे, आज उससे 10% ज्यादा मिल रहा है मेरे को. तो हेलो सोलंकी जी, एम आई ऑडिबल?
यस यस सर, प्लीज.
सर जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी कहा था कि भाई आने वाले समय बेटर है, तो आई मेंटेन माय सेम सबमिशन एंड रिप्लाई कि ये जो आपने कहा कि भाई वॉल्यूम डी ग्रोथ है या इन्वेंट्री बढ़ी है, तो सेम आंसर आई वुड लाइक टू सबमिट हेयर ऑल्सो इन अ कॉपी पेस्ट मैनर. कोई उसमें फर्क नहीं है सर उसके अंदर. सर अगर आप क्वार्टर थ्री का रिजल्ट देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि भैया क्वार्टर टू के अंदर ये जो रिवेन्यू में डिप्रेशन आया ये क्यों आया. और कोई लंबा चौड़ा डिप्रेशन नहीं है सर, हार्डली 10 करोड़ रुपए का डिप्रेशन है. 10 करोड़ रुपए सर कल बेचना और कल बेच दो. वो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है सर. आज आप बोलोगे इन्वेंट्री बढ़ गई पहले के मुकाबले, तो क्या दिक्कत है यार, वो इन्वेंट्री 2 पैसे ज्यादा देके जा रही है, कोई आपका ब्याज बट्टा लग नहीं रहा है इन्वेंट्री के ऊपर. व्हेन यू कैन मैनेज द इन्वेंट्री, व्हेन यू कैन हैंडल योर कैश फ्लोज, व्हेन यू नो दैट द प्राइसिंग आर इंप्रूविंग इन फ्यूचर मार्केट, व्हाई टू सेल टुडेज इन्वेंट्री व्हेन देयर इज नो प्रेशर ऑफ द कैश, व्हेन देयर इज नो प्रेशर ऑफ द बैंक. Still company remains to be debt free, rather the company has increased its total investment values to 241 crores. When the company is not having any kind of a pressure, then why not to hold the inventory if we see a future outlook of the inventories to be at a better pricing level.
Sir, बिल्कुल सही है. तो मैं confirm कर रहा था आपका approach बराबर है.
सर एक बात आपको इसमें मैं आपको और ऐड कर दूं कि भाई आज जो हम 200 करोड़ रुपए की कैपेक्स की बात कर रहे हैं, 200 करोड़ में सर 70 करोड़ तो आप लगा चुके हो और 140 करोड़ रुपया आपके पास पड़ा हुआ है. तो सर आज जब आप कैश सरप्लस हो और 2 पैसे, मैं बोलता हूँ कि मेरे को सर अगर ये लगेगा कि मैं तो जनवरी में बेचूंगा तो मेरे को और पैसा दिखाई देगा और 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे, तो मैं जनवरी में बेचूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को. मेरे को ऐसा कोई कैश का प्रेशर नहीं है कि भैया मेरे को मेरा कैश फ्लो मेंटेन करना है, माल तो बेचना ही पड़ेगा, पैसे लाने हैं, पैसे चुकाने हैं, मुझे ऐसा कोई प्रेशर नहीं है सर. I will look for the right time and right opportunity to hit the market.
True, sir. Right, sir. Got your point. And sir, CFO sir, के लिए question था ये financial.
बोलिए. Yeah, please go ahead, sir. Mr. Deepak is
here. H1 में हमारा interest income है 2 crores का और हमारा 92 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो अगर देखोगे तो हमको सिर्फ 2% का यील्ड मिला है H1 में. तो इतना कम यील्ड के पीछे का रीजन बता सकते हैं, क्योंकि सेम थिंग FY24 में भी हुआ है अपने साथ. 3.81 करोड़ का इनकम आया था और 74 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, तो विच इज 5% यील्ड.
जबकि रिपीट करेंगे वापस.
हाँ, तो अपना कैश फ्लो में इंटरेस्ट इनकम इज 2 करोड़ और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इज 92 करोड़. तो आप उसको यील्ड कंफर्म करोगे तो 2% यील्ड निकलता है, विच इज टू वेरी लो.
क्वार्टर और क्वार्टर देखिए सालों में निकलता है.
हेलो
सोलंकी जी, 2% क्वार्टर का है कि साल का है?
H1
मतलब हाफ ईयर है.
यस. तो 2 डिवाइड बाय 92.
टू डिवाइड बाय
92.
मुझे नहीं पता, उनको पूछना टू कहा.
कैश फ्लो में कौन से लाइन आइटम की बात कर रहे हैं बताएंगे?
इंटरेस्ट इनकम.
इंटरेस्ट इनकम
यस.
कंफर्म बेसिस ना?
यस. 2.11 CR टू बी बेसिस.
2.11 crore interest income.
Yes, please.
So
देख लेते तो बाद में जवाब दे दिया।
तो आपका क्वेश्चन क्या था इसमें 2.11 करोड़ का जो इंटरेस्ट है
और हमारा इन्वेस्टमेंट देखो क्या करंट असेट्स में 92.81 crore का इन्वेस्टमेंट है तो हमको सिर्फ इतना इंटरेस्ट कम क्यों मिल रहा है मेरा वो क्वेश्चन था।
या 92 crore के इन्वेस्टमेंट पे तुमने 6 महीने में सिर्फ 2 crore रुपया मिला है तुम्हारे को 2% इतना कम क्यों मिला। Have you understood the question?
Yeah, समझ गया मैं।
You want to dig out the proper things?
हाँ, check करके।
So Lanky ji, Deepak will dig out the exact situation and then come back to you through over Aya.
Sure, sir. Sir, मेरा वही lines पे और एक काम है उनसे offline ये detail में discuss।
हाँ, वो आप Deepak से समझ लीजिएगा बाद में अलग से। I hope you have our office numbers. You can dial the office number and ask for Mr. Deepak. She will connect you.
Okay. इतने क्वेश्चन से सर ऑल द थैंक यू।
थैंक यू। अ रिमाइंडर टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स यू मे प्रेस स्टार एंड वन टू आस्क अ क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ सौमिल शाह फ्रॉम पारिस इन्वेस्टमेंट्स। प्लीज गो अहेड।
हाय सर, आई हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस। सो दिस ईयर वी आर गाइडिंग फॉर 800 टू 825 crores ऑफ रेवेन्यू एंड 60 crores ऑफ पैट। So next year, as you said, around 1000 crore plus minus 5%. And what can we expect in terms of PAT, profit after tax?
मेरा जो देखिए अंदाजा है या मेरा जो personal calculation है, to be on a conservative side, this year I am projecting that we should be close to 8% or so. 8% में कोई 10-20 पैसे का ऊपर नीचे रह गया या 10-15-20-25 पैसे का ऊपर नीचे हो गया तो that तो time is going to tell. In my opinion, as I said in my last con call, that we are end of a dark tunnel and we see a bright time ahead. I still maintain the same statement as of now also. अगले साल सर मेरे को इस साल से better ही दिखाई दे रहा है सर।
Okay.
अब वो तो सर अभी आज कह पाना मुश्किल है, but in my opinion it would be better than the you know this year. But I still have a very great confidence. That earlier जो हम लोग यू नो 14.5-15-16 मतलब लेट से 15 EBITDA levels पे थे कहीं ना कहीं 9.5-10 टका PAT levels पे थे we will come back on our earlier position that's not a great thing.
Okay, maybe in 1 or 2 years we can reach there.
तो मेरे ख्याल से ये अगले साल से और improvement इसमें आना चाहिए। मोटा मोटी अगर आप बात करो सर मेरे से तो मैं अगर आपको ये बोलूँ कि भाई ये साल कहीं ना कहीं आप समझ लो कि 60 करोड़ का पैट प्लस माइनस 5% का एक अपने को लीवे देना पड़ेगा। अगले साल सर कहीं ना कहीं आप समझ लो कि भाई 8.5-9% के पैट लेवल पे हम शायद अगले साल आ जाने चाहिए। और रिवेन्यू की अगर आप बात करो तो 900 से लेकर 1000 के बीच में।
ओके ओके। और सर ये जो अपना कैपेक्स है तो उसमें असेट टर्न क्या हो गया?
Asset on?
क्या होगा कैपेक्स का? We are doing 230 crore capex, if I'm not wrong.
नहीं, 200 के आसपास है।
200 के आसपास। तो इसमें असेट टर्न क्या हो सकता है? यानी मैक्सिमम कितना रेवेन्यू आ सकता है ये जो नया कैपेसिटी सर?
जनरली देखो 2 से 2.25 टाइम तक का मिलता है।
ओके।
हाँ। जनरली एज ए जो बेस्ड अपॉन माई अर्लियर एक्सपीरियंस आई हैव सीन के यू नो एक ढंग का बिजनेस अगर आप कोई बिल्ड कर रहे हो तो 2.25 टाइम्स आपको ऐसे टर्नओवर रिवेन्यू आपको मिलता है सर उसके अंदर।
ओके ठीक है बस इतना ही क्वेश्चंस थे। इफ एनीथिंग एल्स आई विल कम बैक इन द क्यू। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।
थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन यू मे प्रेस स्टार एंड वन टू आस्क अ क्वेश्चन। A reminder to all the participants, you may press star and one to ask a question. As there are no further questions from the participants, I would now like to hand the conference over to Mr. Puneet Makharia for closing comments.
Thank you very much. Thank you everyone for joining on our Q2 and H1 FY25 earning call. If you have any further questions, please feel free to contact with our investor relation advisor, Churchgate Partners. I will be happy to address your queries. Thank you very much and have a good day.
On behalf of Shri Pushkar Chemicals and Fertilizers, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.